ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 66 जिलों के 142 चुनाव क्षेत्रों के मतपत्रों की छपाई हुई पूरी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने राजनीतिक स्थिरता और सुशासन लगायत वादों के साथ सार्वजनिक किया संकल्प पत्र। महाशिवरात्रि के लिए पशुपतिनाथ में सभी तैयारियां हुई पूरी। और अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच अगले चरण की त्रिपक्षीय वार्ता जिनेवा में होगी 17 और 18 फरवरी को। अब समाचार विस्तार से। फागुन 21 को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 66 जिलों के 142 चुनाव क्षेत्रों के मतपत्र छप चुके हैं। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। आज तक 1,82,30,000 मतपत्र छापे जा चुके हैं। ये बात आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी ने बताई। उन्होंने बताया कि अब महज 11 जिलों के मतपत्र छपाना बाकी है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सार्वजनिक किया है। काठमांडू के धुम्बाराही में स्थित पार्टी मुख्यालय में आज एक कार्यक्रम के बीच राप्रपा अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने संकल्प पत्र सार्वजनिक किया। इसमें सबल, समृद्ध और सबोन्नत नेपाल के दीर्घकालीन सोच के साथ देश में राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नए चरण का आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय सहित समृद्धि के संकल्प लिए गए हैं। स्थानीय और केंद्रीय दो तहों वाली शासकीय संरचना, सर्वधर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र कायम करने की प्रतिबद्धता भी संकल्प पत्र में जताई गई है। राप्रपा ने अभिभावकीय संस्था के रूप में राज संस्था को लौटाने और गैर दलीय स्थानीय तह रखने संकल्प भी अपने संकल्प पत्र में रखा है। नेपाली कांग्रेस ने सभ्य, सुसंस्कृत और संतुलित शैली में मतदाताओं के बीच प्रस्तुत होने का पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। आज कांग्रेस मुख्यालय शानेपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पार्टी ने लोकप्रिय बनने के लिए कपोल कल्पित और असंभव वादे करने और जनता को भाड़ने वाले क्रियाकलाप न करने का भी नेता कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। मौके पर पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसे ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का बिना शर्त पालन करने के लिए नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध है। ये बताते हुए कि कल पार्टी की घोषणा पत्र सार्वजनिक होगा, उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में वे ही वादे किए गए हैं जिन्हें पूरा किया जा सके। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि कांग्रेस के पास देश को बदलने की सोच, संकल्प और योजना है। आज सरलाही क्षेत्र नंबर 4 में भेंटघाट के दौरान सभापति थापा ने कहा कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए वर्षों से करने का वादा करके नहीं किए जा सके कामों को मूर्त रूप देने की योजना और तैयारी के साथ नेपाली कांग्रेस चुनाव में सहभागी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि युवाओं को स्वदेश में ही रखने के उद्देश्य से रोजगारी सृजन के लिए नीति नियम बनाकर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल ने फागुन 21 को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का सेना को निर्देश किया है। महाशिवरात्रि के संदर्भ एवं 262वें सेना दिवस के अवसर पर आज सैनिक मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधान सेनापति सिग्देल ने ऐसा निर्देश किया। इस बात का जिक्र करते हुए कि नेपाली सेना विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ कामों को बेहतर ढंग से पूरा किया है, उन्होंने इस क्रम में चुनाव को शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करने की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाने का निर्देश किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कॉल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। महाशिवरात्रि के लिए पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र की संपूर्ण तैयारी पूरी हो चुकी है। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में भक्तजनों को सहज ढंग से दर्शन कर सकने की व्यवस्था किया गया है और सर सफाई लगायत आवश्यक तैयारी भी पूरी हो चुकी है। ये जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ने दी। पशुपति क्षेत्र में साधु संत एवं दूर से आने वाले भक्तजनों का चहल पहल बढ़ने के साथ देश विदेश से आए साधु संत एवं भक्तजनों के कारण पशुपति क्षेत्र में मेला लगी हुई है। महाशिवरात्रि के लिए पशुपति क्षेत्र को फूलमाला से विशेष रूप से सिंगारा गया है और इस साल सफाई में विशेष ध्यान दिया गया है। ये जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कोषाध्यक्ष श्रीधर सापकोटा ने दी। पशुपति क्षेत्र में आए साधु संत और भक्तजनों के लिए प्रभावकारी व्यवस्थापन में कोष जुटी हुई है। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि इस साल 4000 से 4500 तक साधु संत आने की अनुमान की गई है। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या में पशुपति क्षेत्र में आज शोभा यात्रा किया गया है। इसी बीच महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर पशुपतिनाथ के दर्शनार्थ सहभागी होने वाले भक्तजनों को गर गहना लगाकर मंदिर नहीं जाने के लिए पुलिस ने सभी से अनुरोध किया है। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत पालपा बुटवल सड़क खंड के तिनाऊ गांव पालिका 3 दोभान में टिप्पर से मोटरसाइकिल को टक्कर देने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बुटवल के पालपा की ओर जा रही मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा से आ रही टिप्पर के टक्कर से गुलमी जिला के साबिक पूर्ति घाट 4 के 31 वर्षीय मिलन सारकी और रूपंदेही बुटवल उप महानगर पालिका 8 की 28 वर्षीय सीता राणा की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पालपा के सूचना अधिकारी होम प्रकाश चौधरी ने दी। परसा जिला में संचालित मीटर ब्याज विरुद्ध के अभियान अंतर्गत आज तक 1754 मुद्दा मेल मिलाप के मार्फत से समाधान किया गया है। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से एसपी सुदीप राज पाठक के मुताबिक जिला भर से कुल 2377 शिकायत दर्ज हुआ था, जिसमें से 623 शिकायत का निराकरण होना बाकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच अगली त्रिपक्षीय वार्ता 17 से 18 फरवरी को जिनेवा में आयोजित होने वाली है। क्रेमलिन के प्रवक्ता द्विमित्री पेस्कोव ने आज यह जानकारी दी। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति के सलाहकार व्लादिमीर मेदिंस्की करेंगे। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमेरोव ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेनी टीम पूरी तरह से गठित हो चुकी है और इसमें सैन्य, राजनीतिक और सुरक्षा पक्ष शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य स्थायी और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करना है। तीनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी पहली त्रिपक्षीय परामर्श 23 से 24 जनवरी को अबू धाबी में संपन्न हुई थी, जहां रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सैन्य खुफिया प्रमुख इगोर कोस्ट्यूकोव ने किया था। बातचीत का दूसरा चरण 4 से 5 फरवरी को अबू धाबी में संपन्न हुआ था। इसके बाद अमेरिकी विशेष दूत ने रूस और यूक्रेन के बीच 314 युद्ध बंदियों के आदान प्रदान पर सहमति बनने की जानकारी दी थी। बातचीत के इस नए चरण को संघर्ष की समाप्ति और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 66 जिलों के 142 चुनाव क्षेत्रों के मतपत्र की छपाई हुई पूरी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने राजनीतिक स्थिरता और सुशासन लगायत वादों के साथ सार्वजनिक किया संकल्प पत्र। महाशिवरात्रि के लिए पशुनाथ में सभी तैयारियां हुई पूरी और अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच अगले चरण की त्रिपक्षीय वार्ता जिनेवा में होगी 17 और 18 फरवरी को। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।